कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत भक्ताय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत भक्ताय नमः। आज मैं श्री राधा दामोदर मंदिर के श्री प्रांगण में श्रील रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भूगर्भ सुख गोस्वामी और इन लोगों के आराध्य राधा दामोदर जी के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं थोड़ा सारा दामोदर जी के संबंध में कुछ कर लूंगा। आई थिंक दैट रामचंद्र विल ट्रांसलेट आफ्टर इट मे बी दैट इन मच समटाइम्स आई मीन। तो उनकी कृपा से मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं और राधा दामोदर जी के संबंध में बतला रहा हूं। यशोदा मैया जी के लाखों शिष्य थे, नौकरानियां और नौकर थे। श्रीमती राधिका सो मेनी मेड सर्वेंट एंड सर्वेंट, उनको कोई अपने हाथों से दधी मंथन करने की जरूरत नहीं थी, किंतु आज दधी मंथन कर रही है प्रतिपदा के दिन में। अभी प्रतिपदा आने वाली है, उसी में उन्होंने सोचा हमारा लड़का चोरी करता है, क्यों हमारा क्यों लड़का चोरी करता है, जब बंद कर दिए देसी शब्द हो हमारा लड़का चोरी क्यों करता है। फाइव मई चाइल्ड हैज बिकम थी परहैप्स ही हैज नो स्वीट बटर इन माई होम, हमारे घर में अच्छा मीठा मक्खन नहीं निकलता, इसलिए आज सब नौकरानियों को दीपावली के दिन में छुट्टी दे दी, नौकरों को भी हटा दिया, अपने हाथ से आज पद्मगंधा और दूसरे दूसरे गांवों का दूध दुहा अपने हाथों से और दधी जमाया और इसके बाद में आज सवेरे भोर में 4 बजे दधी मंथन करने लगी। शिवर सौ बेटी सौ बहुत ही सुंदरी थी, मैं तो उनका बेटा कृष्ण जगत को लुभाने वाला ऐसा सुंदर कैसे हो जाता। आज हमने सवेरे में नमामि स्वरम के पहले श्लोक में कृष्ण की 4 माधुरियां रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और परिकर माधुरी के संबंध में कुछ बतला रहा था। जो रूप के संबंध में कृष्ण कैसे परम सुंदर थे, जो पशु पक्षी कीट पतंग सब अपना धर्म प्रत्याग करके धर्म परिवर्तन करते, जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता। आज दधी मंथन कर रही है कृष्ण, जो यशोदा मैया का रंग कैसा था, गोरा था न सांवला था, कैसा रूप गोस्वामी ने कहा है ये कृष्ण जैसा ही था, बहुत अद्भुत अलबेली सुंदरी थी, कमर पतली और बस्तक्षल विशाल, परम कोमल यशोदा जी। वो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है कि एक समय में ब्रह्मांड घाट में बहुत से बच्चे मिलकर के कृष्ण को चिढ़ा रहे थे। आप लोग सुनिए एकदम चुपचाप मत चुप कर निर्देश मत, चिढ़ा रहे थे कृष्ण समझ नहीं पाए, सभी बच्चे ताली बजा करके और कृष्ण को चिढ़ा रहे, ऑल द बॉयज फ्रेंड्स आर मेकिंग कृष्ण पर जोकिंग कृष्ण एंड दे आर ताली बजा रहे, बलदेव प्रभु भी बजाने लगे ताली और हंस रहे हैं, मधुमंगल सुबाल श्रीराम ऑल वो लोग कर रहे ताली बजा रहे। कृष्ण नहीं समझ सके ये क्यों आज हमें देख करके चिढ़ा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। मधुमंगल से पूछा, उन्होंने कान में कह दिया, अरे भाई बात तो यह है, इसलिए चिढ़ा रहे हैं कि जसोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरा, और बीच में ये कहां से काला टपक पड़ा उनसे, ये जसोदा नंद का बेटा नहीं, ये तो किसी काली लड़की का, काली स्त्री का बेटा होगा, और जन्मने की साजिश में उसका पालन पोषण नहीं कर सकी होगी, इसलिए इमली के गड्ढे में उसको रख दिया फोड़ रहे। और वहां रो रहा था नंद बाबा जी ने देखा जो एक बच्चा रो रहा है, उसको उठा लिया और जसोदा जी के गोदी में दे दिया, तब से दत्तक पुत्र के रूप में तुम्हें पाल पोस रहे हैं, तुम जसोदा नंद का बेटा नहीं है। व्हाट आई टोल्ड, व्हाट आई टोल्ड, वेरी 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 क्विकली। सब बच्चे हंसने लगे, कृष्ण रोने लगे, अपनी मैया के पास में गए, आज उनकी गोदी में चढ़ने गए, दूध पी नहीं गए। जसोदा मैया पूछे, तू किस लिए रोता, क्या बात हो गई, गोदी में लेना चाहती हैं, फिसल जाते हैं। अंत में बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, क्योंकि मैं काला हूं और तुम गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, इसलिए लोग चिढ़ा रहे हैं ये तुम इनके पुत्र नहीं। बलदेव भी चिढ़ा रहा है, वो भी कहता है, इसलिए वो रो रहे हैं। जसोदा मैया ने प्रति ठाकुर जी को सालग्राम को स्पर्श किया और स्पर्श करके बोली, नहीं बेटा तू हमारा बेटा, तुम दूसरे का बेटा नहीं, ये चिढ़ाने से क्या, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके कहती हूँ, ठाकुर जी की शपथ, ये तू हमारा बेटा। तब कृष्ण जसोदा जी बड़ी सुंदरी, कृष्ण जैसे ही जब वो दधि मंथन कर रही है अपने हाथों से, एक खंभा है उसमें रस्सी लपटी है और दो हाथों से घर घर कर रही है, हाथ का कंगन सोने का बज रहा है, मानो ये करताल है, और उसमें दधि मंथन से जो शब्द उत्थित हो रहा है वो मानो क्या है, मृदंग है। वो क्या कर रहा है, भिक्षाम भिक्षाम, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, राधा दामोदर का भजन नहीं करते हैं, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। उसने जसोदा जी के चेहरे से पसीने की बूंदे मन मोती की लड़ियां हैं झड़ रही हैं, चेहरा भी कुछ गंभीर, और कृष्ण भी कर रही है, क्या कर रही है कृष्ण, कृष्ण के बाल लीलाओं का स्मरण करके और उनका स्मरण करके कृष्ण कर, क्या कर रही है, गोविंद दामो के बचपन की लीलाओं का स्मरण करके कीर्तन कर रही हैं, एकदम तन्मय हो गई हैं, और कृष्ण पलंग पर सोए हुए थे और उठ करके मैया के पास आएंगे, देखा तो मैया इधर उधर है, तो देखा कि मैया तो है नहीं, कहां गई, नंगे बिल्कुल, आंखों में काजल, रो रहे हैं, धीरे धीरे रो रहे हैं। जब देखा कि मैया नहीं है, मैया नहीं सुने, तो जोर से रोने लगे और जोर से रोने लगे। फिर किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से विश्व ब्रह्मांड को अपनी कलाओं से धारण करने वाले कृष्ण आज खाट से पलंग से उतर नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से आऊ करते हुए उतरे पलंग के नीचे आकर से देखा जी मैया तो वहां पर दधि मंथन कर रहे हैं, जोर से रोने लगे, आंखों से आंसू अभी कम है तो अभी ऐसे मिलने लगे, कुछ आंसू और काजल मिल करके यहां से गंगा जमुना की धारा जैसे प्रवाहित होने लगी। थोड़ी देर के बाद में बड़ी मुश्किल से जसोदा के पास में सुनी, जसोदा मैया तभी नहीं सुन रही, उन्होंने एक हाथ से दधि का मंथन और दूसरे हाथ से जसोदा जी का अंचल उन्होंने पकड़ लिया। जसोदा जी से देखा जी ये कौन ऐसा कर रहा, उसी समय में जसोदा जी ने देखा दधि मंथन बंद कर दिया और अंचल में छिटा करके इन्हें स्तनपान करा, प्रेम से आंसू की लड़ी बहने लगी, आंसुओं की लड़ी और तरह तरह के भाव सात्विक उनके हृदय में विकसित होने लगे। इतने में दूध पासी में रखा था चूल्हे पर, वो उफन रहा और वो आग में गिर रहा। जसोदा जी ने देखा हमारे देखते ही ये जल जाएगा दूध, तो कृष्ण कैसे दधि मक्खन इत्यादि खाएगा, इसलिए कृष्ण को नीचे रख करके उसको शांत करने के लिए जाना चाहती थी। यहां पर हमारे टीकाकारों ने बतलाया है ये दूध चिन्मय है, वो देख रहा कि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकूंगा तो हमारे जीवन धारण करने की क्या जरूरत है। यशोदा जी कह रही है नहीं, मैं अपनी सेवा बंद करके पहले तुमको सेवा में लगाऊंगा, गुरु यही का कार्य है, गुरु अपने समस्त शिष्यों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करता है, नहीं तो गुरु का गुरु तो क्या। जो सदा मैया के हृदय में पेट में अखिल विश्व ब्रह्मांड का दूध उनके स्तन में, यहां तक कि क्षीर समुद्र उनके दूध के एक बूंद से इतना बड़ा हुआ है क्षीर समुद्र, इसलिए उनका दूध अपुरंत है। और दूसरी तरफ में कृष्ण का पेट कैसा है, उसमें अखिल विश्व ब्रह्मांड समाया उनके एक रोम रोम सूप में, और उनको बड़ी भूख लगी है तो उनका पेट क्षीर समुद्र जैसा भी एक रोमे के कूप में भी सभी समा सकता है। कृष्ण की भूख कभी समाप्त नहीं होगी, उनका पेट कभी भरेगा नहीं, यशोदा मैया का दूध कभी भी खत्म नहीं होगा, कृष्ण पीते रहेंगे दूध आता रहेगा, इसलिए हमको सेवा में लगाने के लिए जरूरत नहीं होगी, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए प्राण रखने की जरूरत क्या, इसलिए दूध अग्नि में उफल करके अपने प्राणों का विसर्जन दे रहा है। जो लोग जैसे कि नरोत्तम ठाकुर ने भी कहा रहा कि केने वा अच्छा है प्राण किसी को, यदि कृष्ण सेवा नहीं हो सकी इट वी कैन सर्व कृष्ण एंड हिज डिवोटी नो नीड ऑफ स्केपिंग लाइफ विश ट्राई टू गिव अप आवर लाइफ सो दैट इज थिंकिंग मिल्क इज गिविंग हिज लाइफ इन द ओशन इन द फायर। इस समय यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, हम अपना दूध पिलाना बंद कर रहे हैं, हम तुमको पहले कृष्ण की सेवा में लगा करके पीछे में सेवा करना, इसलिए यशोदा मैया ये वात्सल्य रस की गुरु है, इसलिए दूध को बचाने के लिए जब गई तो कृष्ण उसको छोड़ नहीं गए थे, जैसे बंदर का बच्चा अपने मैया को अपने हाथों से पैरों से जकड़ लेता है, कृष्ण ने अपने यशोदा मैया का स्तन बड़े जोर से पकड़ लिया, अपने पैरों से लपेट लिया और छोड़ेंगे नहीं। 10,000 हथियों का बल वाली पूतना लाख के साकर के भी कृष्ण से अपने स्तन को नहीं छुड़ा सकी। आज यशोदा मैया ने किया क्या, एक गोपी साधारण सी मालूम होती है, कृष्ण का बैठ गया और ऐसा था तो कृष्ण को ऐसे एक हाथ से उठा करके बैठा दिया। कृष्ण का सारा बल सर्वशक्तिमत्ता सारी कहां भगवत्ता लुप्त हो गई, उनकी कार्य कोई भी शक्ति काम में नहीं आई। क्यों? जहां पर वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य का अभाव होता है, वहां पर शक्तिमत्ता शक्ति कोई भी काम नहीं कर सकती। इसलिए यशोदा जी के सामने कृष्ण की सारी भगवत्ता सारी शक्तिमत्ता सब फेल हो गई और यशोदा मैं एक हाथ से उनको यहां रख करके चल पड़ी दूध को दूध के पास। उन्होंने प्यार के छींटे उस पर दिए, मैंने लविंग टीचर शावर ऑफ फॉर लव एंड अफेक्शन, और उनकी सांत्वना से दूध शांत हो गया और उसको उतार करके फिर लौट गया। इधर में देखा कि कृष्ण है नहीं, कृष्ण ने क्या किया? वो देखा जैसे हमको यशोदा मैया अतृप्त अवस्था में छोड़ करके चली गई, इसलिए उनको क्रोध हो गया। अरे भगवान को कभी क्रोध होता है, उनको कभी भूख लगती है, तो उनको भूख भी लगी है, क्रोध भी हो गया और दांत कड़मड़ कड़मड़ करने लगे, अपने दांतों से होठों को पकड़ लिया। इस तरह से माने क्रोध कहा जी आज मैं कुछ शिक्षा दूं, इसलिए दधिभांड जिसको मथन कर रही थी उन्होंने उसको हिलाया कि इसको गिरा करके लुढ़का दें और सब गिर जाए। सारी चेष्टा लगा दी किंतु वो भांड नहीं तक से मस्त नहीं हुआ। तो देखा जैसे मैं कुछ नहीं कर सका, तब एक शिला पुत्र लोढ़ा हाथ में लिया और नीचे से जिधर में पतला होता है ऊपर से तोड़ने से तो पूरा जाएगा नहीं, इसलिए एकदम नीचे में पेंडी से एक लोढ़े से थोड़ा सा छेद कर दिया और देखने लगे ऐसे, और देखा जो सब 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 सबका हुआ सारा उसमें जो मथा हुआ मथा जैसा हो गया था वो सब धीरे धीरे निकल गया। सब जब निकल गया तब उनको याद, अरे मैया मैयारी तो आने वाली है, अभी कहीं हाथ में तो किया लेकर के और मुझे मारे दंड न दे, हमारा कान न पकड़ ले। इसलिए उनको बड़ा डर लगा, बड़े भयभीत हो गए, उनको याद आई और सोचा कि अब कहीं हमको छिपना चाहिए, इसलिए वहां से हट करके पासी में घर था उसमें छिपने के लिए गए। उनको याद नहीं कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, माने क्या चोर बहुत सावधानी से चोरी करता है कि हम उसका कोई पता न लगाए, किंतु कोई न कोई चिन्ह छोड़ जाता है जिसके बल पर पुलिस उसको पीछे से उसे पकड़ लेती है, वो समझता नहीं। यहां भी बाल कृष्ण है, अभी बुद्धि परिपक्व नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो दधि मंथन जहां पर पड़ा हुआ था अपने पैरों को उस पर छाप लेते हुए घर में घुसे और इतने में देखा था जिस छीके पर आज का मथा हुआ मक्खन मीठा लटक, अब उनके मुख से पानी आया। अरे ब्रह्म के मुख से कभी पानी आता है? बड़ी भूख लग गई, बड़ा लोभ उत्पन्न हुआ, उन्होंने उल्टे हुए ओखल पर चढ़ दिया और चढ़ करके झट मक्खन लेने लगे और एक आंख से इधर से देख रहे हैं कभी इधर से भय भी मैया ना आ जाए, और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। इतने में उनके भाई बंधु सब जुट गए, बहुत से बंदर लोग जुट गए, रामलीला के इनके परिकर है ना, बिना कुछ पैसे के उन लोगों ने रामचंद्र जी की सेवा की, बिना खाए पिया, कोई महीना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, रसद नहीं, पेड़ों की पत्तियां और फल फूल खा करके रामचंद्र जी की सेवा की थी, इसलिए उनके ऋणी बने हुए हैं। आज दोनों हाथों से उनको मक्खन दे रहे हैं, जहां मक्खन निकालते हैं बंदर उछल करके उनके हाथों से मक्खन ले लेते हैं और खा लेते हैं, जो जो खट्टा है उन सबको घर में दे रहे हैं, कोई मीठा है थोड़ा सा चख लेते हैं और बाकी सब उनको खिला रहे। इतने में काजभूषुंडी के परिवार वाले आ गए कौवे और कौओं को भी देने लगे, वो रामचंद्र जी के भक्त हैं। इतने में यशोदा मैया आकर के देखा, पूछा रही कहां गया बदमाश, ये नॉटी बॉय वेर ही है सर, सो ही वाज सेटिंग एंड एट वंस ही बिकेम स्मार्ट। वो हंसने लगी, अरे ये बेटा चोर, ये तो पैरों का छाप देते हुए इधर में कृष्ण के चरणों में चिन्ह शंख चक्र गदा कलश स्वस्तिक इत्यादि 19 प्रकार के चिन्ह यशोदा जी ने देखा, यही है बस। उन्होंने झांक करके देखा कि वो दुख के ऊपर में एक खल कौन कृष्ण और दूसरा खल कौन उदू खल। जो चोरी करता है वो खल है और जो उसकी सहायता करता है वो क्या है वो उपचोर है। तो इसलिए ये ओखल जो है उसकी सहायता कर रही है जिस पर चढ़ करके वो ले रहा है यह है उदू खल। इसलिए जबकि वहां जब देखा तो झट हाथ में लट्ठी या छोटी सी ले ली और लेकर के धीरे धीरे कैसे बिल्ली बिल्ली जैसे चलती है सूखे हुए खड़खड़ के पत्तों पर भी चले तो धीरे धीरे ऐसे रखेगी कोई शब्द नहीं होगा ऐसे बिल्ली की भांति चलती हुई झट किवाड़ के भीतर में पहुंच गई। और कृष्ण के पास में जो ही लपकी पकड़ने के लिए त्यों ही मुंह करके वहां से यशोदा मैया उसके पीछे पीछे भागी। कृष्ण बड़ी तेजी के साथ में दौड़ रहा और यशोदा मैया हाथ में लपटी लेकर उनके पीछे उनसे अधिक दौड़ करके पीछे से उनको पकड़ लिया और पकड़ करके उनको ले आई घर में और उनको बांध रही। विश्व में आज तक किसी ने नहीं बांधा, राम को किसी ने नहीं बांधा, नृसिंह को कोई बांध सकता है? ये ऐसे बात्सल्य की लीलाएं नहीं कर सकते, किसी के लिए संभव नहीं। ऐसा कोई प्रेमी भक्ति नहीं है, भक्त नहीं है जो नृसिंहदेव को बांध सके, राम को बांध सके या द्वारकाधीश को भी बांध सके, मथुरेश कृष्ण को भी कोई नहीं बांध सकता, नारायण की तो बात नहीं। किंतु आज उससे भी ऊपर वाले जो सबके कारण हैं, आज उस कृष्ण को यशोदा मैया शिक्षा देने के लिए घर की सारी रस्सियां लगा दी, उसमें नहीं बांध सकी। सवेरे से दोपहर हो गया नहीं बांध सकी, प्रतिज्ञा की कि मैं इसको बांधना है हम उनको बांधेंगे, बांध कर कहीं पानी पिएंगे। आज पानी भी नहीं पिया था, कुछ नहीं लिया, सवेरे 4 बजे से लगी हुई है नहीं बांध सकी। दूसरे घरों की सारी रस्सियां आई, गोकुल की सारी रस्सियां आ गई, लंबी रस्सी होती गई और कृष्ण की कमर के 12 अंगुल की जिसमें कि सोने का कंगन लगा हुआ है करभनी, बस वही है, बढ़ नहीं रहा, किंतु बांध नहीं सकी। क्यों? अपनी चेष्टा से कोई नहीं बांध सकता, अपनी साधना के द्वारा कृष्ण को कोई नहीं प्रसन्न करके वशीभूत कर सकता जब तक कि कृष्ण की कृपा न। इसलिए अपनी साधना साधकों की और उसके द्वारा कृष्ण द्रवीभूत होकर के जब कृपा करेंगे तभी वो बंधन में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ यशोदा जी बांधते थी और उनके पसीने से तर बर हो गई, केस खुल गए, काजे सालग्राम ठाकुर मैं इस बच्चे को बांध नहीं सकती, बड़ी विकल हो गई और शरणागत हो गई, पसीने की बूंदे आ रहे हैं। तो देख करके यशोदा का परिश्रम देख करके कृष्ण स्वयं बंधन कृपया श्री सुबंधने। इसलिए यहां पर आज तक इसके पहले किसी ने नहीं बांधा, किसने बांधा यशोदा जी, किसके द्वारा बांधा, रसी के द्वारा, रसी नहीं प्रेम रज्जु के द्वारा। इसलिए कहा गया नमस्ते सुदाम्ने सुरदिप्रीताम्ने तदीयोदराया सविश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै तदीयप्रिया नमो नन्दिताय। आज ही हम संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया, अभी हम लोगों के वहां पर जाकर के बहुत से कार्य हैं, इसलिए आज यही हम समाप्त करके राधा दामोदर जी के चरण में प्रार्थना करके अब हम सभी लोग कीर्तन करते हुए मठ प्रांगण में पहुंचे। गौ प्रमाण श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील भूगर्भ गोस्वामी की जय, श्रील राधा दामोदर जी की जय, राधा वृंदावन चंद्र जी की जय, राधा छैल चिकन जी की जय, राधा माधव जी की जय। गौ प्रमाण।